पञ्चतत्त्वानां कृष्णां भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं समाने भक्तशक्तिकम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनय तद्धामवृन्दावनम् वर्गेण वाकस्मिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणमवलम् प्रेमापुमार्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदम् तत्रादरनापरः हे कृष्णागवासिन्धो
वहां एक सेतु बांधना इत्यादि वैसे दिखाया अपने ग्वाल बाल बच्चों के साथ किया करते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जल्दी उठ गए और सोचा उन्होंने कि मुझे सुबह का नाश्ता जो है वो मन नहीं करता। वैसे रोज वो घर में सुबह का नाश्ता करके चले जाते, माता यशोदा उनको अच्छी तरह से खिला पिला करके देती, सजा सजा कर देती, और इसी तरह सारे ग्वाल बालों की जो माता है वो भी अपने अपने बालकों को इसी प्रकार के खिला पिलाकर सजा सजा कर। लेकिन आज कृष्ण भगवान ने सोचा कि हम वन में जाकर नाश्ता करें, अर्थात एक पिकनिक करें। वैसे तो लोग पिकनिक को दोपहर के भोजन के लिए तो वो नहीं करता, लेकिन इस बार कृष्ण भगवान ने सोचा कि सुबह का नाश्ता ये भी बन गया है। तो सुबह गली उठे और जो कि आज वो हॉल हुआ करता था जिसे वो बजाते थे बालक बजाता, तो बाजा बजाते थे वैसे सारे ग्वाल बालों के पास उनके बाजा ऐसे हुआ करता था, क्योंकि वो गायों को बुलाया करते थे तो बाजा का प्रयोग करते थे। तो कृष्ण भगवान ने सुबह से उठकर बालक बजाया ताकि सारे ग्वाल बाल जो है वो चलते अपने अपने घर। जैसे कि यहाँ भी हम सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे उनके रिलेटिव वाले ऐसे बाजा बजाते हैं और अलग अलग सुनों में बजाते हैं सारे सैनिकों को बजाने के। तो उसी तरह से कृष्ण भगवान ने अपना बाजा बजाया और इस मधुर ध्वनि को सुनकर सारे ग्वाल बाल जो गए उनको पता चला कि कृष्ण बुला रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से तैयार हो गए, स्नान कर लिया और उनके माताओं ने उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे अच्छे गहनों से उनको अलंकृत किया, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने उन्होंने। इस तरह से ग्वाल बाल सारे तैयार हो गए श्री कृष्ण के साथ में गाय चढ़ाने के लिए और लीला करने के लिए। तो कृष्ण भगवान अपने घर के बाहर आए, हर प्रत्येक ग्वाल बाल था वो अपने घर के बाहर आए अपने गायों को साथ में लेकर। शुक्रदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ग्वाल बालों की संख्या असंख्य है, हजारों की संख्या में ग्वाल बाल है। आप कितने होते हैं? आप कहेंगे 50, 100, 200। आप पॉलिटिशियन भी होंगे और राजनीति में भी होंगे, फिर भी अभी तक कहेंगे 5,000, 1,000, 10,000। लेकिन शुक्रदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण के ग्वाल बाल जो कि अपने अपने घरों के बाहर आए, श्री कृष्ण के बाजे बाजा है वो जो उसकी ध्वनि सुनकर वो हजारों की संख्या, और सब श्री कृष्ण के निकट के लेकर सभी श्री कृष्ण से बहुत ही गहराई से तीन प्रेम करते और श्री कृष्ण उनको सबको अच्छी तरह से पहचानते थे, सबको अच्छे अपने अपने नाम से जानते थे। तो हजारों ग्वाल बाल जो अपने नगर से आ रहा है और हर एक ग्वाल बाल के साथ असंख्य गाय थे। अभी अब देखते हैं कि सारे गौशालय के भारत में ऐसी लगता है, क्यों? जब गाय की संख्या बढ़ जाती है तो देखभाल नहीं कर पाते और फिर इधर उधर दे देते हैं और ये बड़ी परेशानी होती है। किसानों को भी परेशानी होती है कि जब गाय की संख्या बढ़ जाती है तो कैसे उनका अच्छी तरह से देखभाल किया जाता है। लेकिन गोकुल में बताओ में हर एक गोप के पास हजारों की संख्या में गाय, नंद बाबा जी के पास कितने गाय थे? 9,00,000 गाय हो सकती है। 9,00,000 गाय मतलब हमारे समझ के बाहर जाता है। तो हर एक ग्वाल बाल अपने सामने असंख्य हजारों हजारों गायों को रख के सामने बाहर आए तो कुल मिलाकर असंख्य गाय हो जाए। तो उपाधि टीका में लिखते हैं कि अगर हम कृष्ण, कृष्ण के लीला, कृष्ण के पार्षद, कृष्ण का धाम, कृष्ण का नाम, अगर हम जीवन को भौतिक गणना से देखने का प्रयास करेंगे, भौतिक न्याय से इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे तो हम भले हो जाएंगे। अगर श्री कृष्ण नाम आगे न भरे लाल के लिए सेवा मुखे भी जो पालो स्वयं एक अस्मृत करा। शास्त्र में बताया जाता है कि अगर हमने श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण की लीला श्री कृष्ण का काम इत्यादि समझना है तो इन ग्राह्य स्थूल भौतिक इंद्रियों को समझ नहीं सकते। इन देव चीजों को समझने के लिए हमें देव चक्षु की आवश्यकता है। देव चक्षु जब होंगे तब हम समझ पाएंगे कि कृष्ण नाम क्या है, कृष्ण का धाम क्या है। तो उसी के जब भक्ति मार्ग में लग जाते हैं तो हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण के लीलाओं को और उनके पार्षदों को हमें साधारण कोई दंत कथा नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि भले असंख्य गाय हो तो पहली बात तो यह है कि वो सब एक गांव में रहे, इतनी जगह कैसे हुई उसके एक गांव में इतने सारे गाय होते हैं, असंख्य गाय, गाय की बात तो दूर है, इतने सारे सवाल बाल भी रहे कैसे एक छोटे से गाँव। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए काल जगह है ये कोई सीमा नहीं, हमारे लिए समय या काल ये बहुत बड़ी सीमा है, जगह की बहुत सीमा है। अगर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं गोकुलनाथ के लिए तो हर एक एकड़ के हिसाब से इतना खर्चा होगा क्या होगा कितना सब सोच समझ कर आगे चलना पड़ता है, भगवान के लिए कोई सीमा नहीं। बताया जाता है शास्त्रों के गौरव धाम जो है यहां तक कि जिस गौरव धाम को भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में भी रखा है जिसको भौम प्रसारण कहते हैं वो भी कमल की तरह है, कभी इसका विस्तार होता है और कभी भी भगवान इसको अपने आप कम करते हैं। तो जगह की कोई कम नहीं होती तो गौरव नदी गोकुल में भी विचारों में भी ऐसे ही हुआ होता है, भगवान को कोई कठिनाई नहीं हुई, हजारों बाल बालक को उनके माता पिता को उनके घरों को और उनके असंख्य गायों को एक ही गांव में फिट कर एडजस्ट करने की कोई तकलीफ नहीं हुई भगवान की। यह है अचिंत्य शक्ति, अगर इस अचिंत्य शक्ति को हम स्वीकारेंगे नहीं तो भगवान श्री कृष्ण को उनके लीलाओं को कभी भी समझ नहीं पाए। तो क्या जब सारे बाल बाल और गाय गाय के बच्चे से बाहर आए और जो बाल बाल है गाय को सामने रखते हुए बड़े हर्ष उल्लास के मानसिक स्थिति में आगे चल पड़े भक्ति हुए, सारे बाल बाल सुंदर सुंदर कपड़े गहने से पहले से अलंकृत थे ही, लेकिन जैसे जैसे वो पद पे जा रहे थे तो वैसे वैसे वो जो लोग परस्पर में अच्छे फूल मिलते थे अच्छे पत्ते मिलते थे तो उनको भी उठा लेते थे और अपने शरीर को सजा लेते थे। तो उस प्रकार से अपने शरीर को और भी अच्छी तरह से सजाते थे, पहले से ग्वाल बाल बहुत सुंदर था, शिवदेव गोस्वामी बताते कि हर एक ग्वाल बाल बहुत सुंदर था और उसके ऊपर सुंदर कपड़े सुंदर आभूषण और सुंदर सुंदर फूल इत्यादि। तो ये सारा दृश्य कल्पना कीजिए अपने मन में क्या दृश्य हुआ होगा, हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में गाय चल रहे हैं, सुंदर सुंदर गाय और गाय भी कैसे सब गहनों से अलंकृत, कपड़ों से अलंकृत, फूल माला से अलंकृत सुंदर गाय और सुंदर बाल बाल और सारे चल रहे हैं और हरेक बाल 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 के पास में एक बांसुरी एक छड़ी गायों को चलाने के लिए बाजा हरे के पास रहता था गाय को बुलाने के लिए और फिर कभी कभी रस्सी भी रहती थी कभी गाय को पीछे के पैर में बांध कर फिर दोन को करने के लिए ये सारी चीजें रहती थी घूमने के बाद। तो ये सारा दृष्टि का धन्य हुआ होगा, कल्पना करके अपने मन ही मन में देखिए इस दृष्टि को कि वृंदावन में क्या चल रहा था, उस ऐसे चल रहे हैं बड़े आनंद से, अब हरे बार बार अपने अपने बांसुरी बजाते जा रहा है, ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण भगवान बांसुरी बजा कर रहे, हाँ कृष्ण भगवान की बांसुरी में जो जादू था वो तो और किसी के बांसुरी के ध्वनि नहीं था, लेकिन फिर भी हर एक बार बार अपने अपने बांसुरी बजाते जा रहा था, कभी रहते फूल मिला वो उठा लिया कान में लगा लिया किसी के अपने बालों में लगा लिया पत्ते में किसी ने दूसरे के कान में डाल दिए, ऐसे करते करते जा रहे कृष्ण भगवान और बाल बाल पुत्र और गाय और गायों के बच्चे ये है बेटा क्या गाय है क्या बाल बाल क्या कृष्ण बस और किस चीज की आवश्यकता है यही असली जीवन है। जैसे अंग्रेजी कहते हैं दिस इज लाइफ ये जीवन न कि हम या पौ पौ गाड़ी में आते जाते धुआं प्रदूषण और झगड़े ये सब फिर कहाँ का जीवन है? हमने आज का जीवन अपना बिल्कुल बर्बाद कर दिया। एक वृंदावन का सरल जीवन छोड़कर हमने अपने आप को कितने मुश्किल अपने सर पर ले लिया। तो खैर वन में जब चले गए तो रस्ते में शरारत करते करते थे सारे ग्वाल बाबा के साथ करना टिकट का बहुत किया जाता था, नाश्ते के लिए सुबह का नाश्ता दोपहर का नाश्ता वो बक्सर में माता उनको बनाकर देती थी तो साथ में लेकर जाते थे। जैसे यहाँ हमारे बच्चे थे जो स्कूल में जाने से पहले अपना भोजन लेकर जाते थे साथ में, तो फिर एक ग्वाल बाल दूसरे ग्वाल बाल का टिकट चुरा लेता और चुरा कर किसी तीसरे ग्वाल बाल को दे देता। जब पहले ग्वाल बाल को पता चल जाता कि मेरी टिकट बॉक्स चोरी हो गई है तो उस बॉक्स के पीछे भागता है। जब तीसरा देखता है कि पहला उसका टिकट बॉक्स लेने आ रहा है तो किसी चौथे को देखता है और ऐसे एक ग्वाल बाल दूसरे ग्वाल बाल तक वो टिकट बॉक्स चले और बेचारा ग्वाल बाल जो है रो गए तो रो पड़ता तो उस समय ठीक है उसको टिकट बॉक्स मिल जाता। वो ऐसे मिला करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्कूलों में भी ऐसे ही शरारत चलते रहते हैं। ये प्रवृत्ति जो है बच्चों में ऐसे लीला करने के लिए वो कहां से आती है? कृष्ण से ही आती है। कृष्ण भगवान भी अपने ग्वाल बाल पुत्रों के साथ में ऐसे लीलाएं किया करते थे, इसलिए हमारे अंदर भी एक प्रवृत्ति है। कभी कभी बड़े होकर भी प्रवृत्ति चलती है लेकिन उसका विपरीत प्रति होता है इसलिए लोग उठाकर समझे के डाल देते हैं जो उसमें पैसे जोड़े कर लेते हैं। ये प्रवृत्ति जो है ये भी कृष्ण से आती है लेकिन तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तव में इसीलिए तो कृष्ण आते हैं कि हमें निमंत्रित करने के लिए कि आओ। जैसे ग्वाल बाल मेरे संग में दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे थे तुम लोग भी आ जाओ मेरे साथ में और दिव्य आनंद प्राप्त करो। लेकिन यहाँ पर हम लोग सब जड़ आनंद में मग्न है इसी को कुछ ऊंचा समझते हैं यही सब कुछ है। लेकिन कृष्ण भगवान लीला करते हैं अवतार रहते हैं इसलिए हमें समझाने के लिए कि ये कथा कथित जो आनंद है एक जड़ आनंद जो है इसको छोड़ो और दिव्य आनंद की अनुभूति करो और मेरे लीला में शामिल हो जाए और भगवान आकर प्रदर्शित करते हैं लीलाओं को हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार की लीला को करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बार बार जो है लीला करते रहते हैं। आगे चलकर जब वो वन में और अंदर चले जाते तो अलग अलग ग्वाल बाल अलग अलग क्रिया करते लीला करते। एक कोई बच्चा बांसुरी बजाता, दूसरा बच्चा अपनी अपना बाजा बजाता, कोई और बच्चा वो मोर को देखता कि मोर नृत्य कर रहा है, मोर के पास में जाकर मोर के स्तन में नृत्य करता उसकी नकल करता, जैसे मोर कदम लेता था वो बालों को कदम करता, मोर अगर करता तो बालों को करता और कोई बालक थे वो जो भेंगे हैं कदमों की उनसे आवाज करते कदमों के पीछे भागते रहते और कोई बालक कोयले के घी के नकल करता और कोई बालक होते ज्यादा शरारती होते तो बंदरों की नकल करते। जब बंदर जो है वो पेड़ की शाखाओं में बैठे रहते तो वो भी कूद पड़ते पेड़ की शाखा के ऊपर और बंदर के साथ में बैठते। बंदर यहाँ नीचे आके बैठता तो भी बंदर के साथ में जाकर चुपचाप बैठते दरिया और वही होते हैं। बंदर क्या करें, बंदरों की आदत आप जानते हैं क्या है? बंदर नकल करते हैं, आप जो भी करेंगे बंदर कैसे करेंगे, इसलिए उनकी आदत है। ये कभी कभी काम में आती है क्यों? क्योंकि इनकी बुरी की आदत है जो छीन के नहीं देना चाहिए। जैसे वृंदावन में आजकल बंदरों बंदर जो है यात्रियों को बड़ा परेशान करते हैं, खास करके खुद भी अनुभव है चश्मा उठा के ले जाते हैं। इसलिए जब हम अंदर यात्रा में जाते हैं चौरासी कोष वासी यात्रा करते हैं या पक्ष कोष यात्रा भी करते हैं अंदर वृंदावन में तो सभी को कहा जाता है कि चश्मा उठा के रख लो या गोल के हाथ में कुछ आपने प्रसाद रखा है गोल के आगे रखा पर्स रखा तो वहां पे ठीक है आप चंद्र जाके बैठ जाएंगे आपके सर के ऊपर हाथ रखेंगे डर के मारे बेकार या कुछ करते ही नहीं आने वाले जगह पर चश्मा उठाकर ले जाते हैं और फिर ऊपर दीवार पर बैठ कर ऐसे ऐसे करके चिढ़ाते हैं और वो करते हैं ऐसे भाई अभी देखेंगे कैसे तुम्हें तुम्हारा चश्मा मिल जाता है। तो फिर इस कैसे लेना पड़ता है कोई आज चीज में हाथ में चीज ले तो नीचे फेंकना पड़ता तो जैसे हम कर्तव्य से बंधन करता है इसलिए आदत कभी कभी वो भी चश्मा से खाते हैं, लेकिन आजकल बंदर बड़े चतुर हो गए, वो जानते हैं कि सारी यात्री ऐसे करते हैं, वो कहा लेकिन खैर वृंदावन के बंदर के आजकल के वृंदावन के बंदर की तरह आजकल के वृंदावन के बंदर बड़े खतरनाक हो गए थे, लेकिन उस जमाने में वृंदावन के बंदर थे बड़े सौम्य थे सौ स्वभाव थे, तो आकर बैठते थे नीचे पत्थर पर और कोई एक बालक जाकर उनके पास में जाते थे, और जैसे बंदर अगर मुंह हाथ करता था तो बच्चा भी हाथ करता था, और बंदर दूर पड़ता था दृश्य होकर तो बच्चा भी दूर पड़ता था, कभी कभी बंदर जैसे बंदरों की आदत होती है अपने दांत दिखा लेता तो बच्चा भी दिखा लेता, तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जगह सारे बाल बाल से अलग अलग चीजें क्रियाएं करते हैं, तो कहीं कोई बतख होते तो बतख के पास हम जाकर बैठ जाते, कहीं हंस अलग सुंदर सुंदर नदियों में ऐसे तैर रहे होते तो वो भी पता वो हंसों के साथ में हंस की जो नृत्य होते हैं उनके जो पोत होते हैं उनके पता करते हैं, हंस ने गला ऐसे करते हैं तो वो बालक की गला ऐसे करते हैं, तो इस प्रकार से कि वो नदी के तट पर जाते नदी के तट में तट में छोटे छोटे कुंभ जो होते हैं वहां मेंढक होते हैं, तो मेंढक होते नकल करते हैं मेंढक ऐसे बैठते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं मेंढक ऐसे बैठा तो मेंढक के साथ बजाते बैठते हैं, और मेंढक जब डर के मारे फूट पड़ता पानी में तो बच्चे उसी तरह से फूट पड़ते रहते मेंढक फूटता है, तो वैसे लीलाएं करते रहते विष्णु करते थे और बाल बाल भी करते, तो देखिए कितनी एक सुंदर लीला ऐसे करते, और ऐसे करते करते कभी चोर पोलिस खेलते, और एक बार हर दिन एक दूसरे का पीछा करते रहते और उनके बीच में स्पर्धा होती कि कौन कृष्ण के पीछे आ गया, शुभदेव गोस्वामी इसका बड़ा सुंदर रूप से वर्णन करते हैं श्रीमदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब श्री कृष्ण वन और अंदर चले जाते थे वन शोभे शनारायणम वन की शोभा आपको देखने के लिए वन के सौंदर्य को देखने के लिए कब कृष्ण देखते क्या वो जगह कितनी सुंदर है देखना चाहिए, उस तरफ जाते तो सारे ग्वाल वालों का पीछा करते अहम पूर्वम मैं पहले एक संस्पृश्य मैं पहले कृष्ण का स्पर्श करूंगा मैं पहले कृष्ण का स्पर्श करूंगा, तो इस प्रकार से तो पीछे था फिर किसी का स्पर्श करता तो कहते मैं पहले स्पर्श कर लिया, तो उस तरह से जैसे साधारण बोला लीला करते वैसे लीला करते अद्भुत था अनंत को भी ब्रह्मांडों में है जिनसे बड़े बड़े देवता भी घबराते हैं जिनके भय से सारे देवी देवता अपना अपना काम करते हैं जिन्होंने बड़े बड़े असुरों का वध किया है वो भगवान श्री कृष्ण अभी ऐसे लीला करते हैं जैसे साधारण मानव करते हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी आगे और सुंदर वर्णन करते हैं एकदम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरनारकेण साकं भुजलो कृतपुण्यपुञ्जा। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो ब्रह्मवादी होते हैं ज्ञानी लोग होते हैं सताम वो सोचते हैं कि परम सत्य भगवान कौन है निराकार ब्रह्म है, तो निराकार ब्रह्म के तेज से प्रभावित होकर किसी की प्राप्ति के लिए वो इच्छुक होते हैं, तो वो सोचते हैं कि भगवान है निराकार के हैं दास्यम कदाना पर दरिद्रे हैं, और भी ऐसे कोई भक्त होते हैं भगवान के जो भगवान को प्रभु मानते हैं और अपने आप को दास समझते हैं, और भी ऐसे कोई लोग होते हैं माया शिताना जो माया के आश्रय में है महामाया के आश्रय में अज्ञान में है, इसलिए क्या सोचते हैं नर बालक ये है कि कृष्ण जो है ये एक साधारण बालक है, क्योंकि साधारण बालक अगर लीला कर रहे थे कृष्ण को सोचते हैं एक साधारण बालक, जैसे कई बार लोग सोचते हैं कृष्ण साधारण राजा थे
योगी थे, राजनीतिक थे वो, और ऋषि थे। तो उसी तरह से थोड़ा ऐसे लोग कहते सोचते विश्व साधारण काम है, लेकिन मुझे दोस्तों कहते हैं साकम मुझे हर रूप में तो मैं समझा, लेकिन वाल्वल ऐसे नहीं सोचते। वाल्वल क्या सोचते थे, ये तो मेरा मित्र है, अरे ये कौन सा बड़ा आदमी है, किसी से कहते हैं तुम कौन बड़ा दो, तुम्हें आने का किस तरह गाड़ी को सब बता, तुम कौन से बड़े आदमी हो, तुम हम बराबर के हैं, देखो तुम्हारे शक्ति इतनी है तो मेरे से कोई कम नहीं है। तो ऐसे कहकर निकट का प्रेम था, विष्णु को भगवान नहीं मानते थे, विष्णु को अपना यार अपना मित्र मानते थे। कोई अगर कहता है कि तुम्हारा मित्र भगवान है तो कहते कहते तुम बहुत सारी बात है, मैं तो कुछ दिनों कलिष्ठ होना चुका और विष्णु रोने तक पहुंच गए थे, अभी कब से भगवान हो जाता है। तो ये था उनका संबंध विष्णु भगवान के साथ। और वास्तव में बड़े बड़े योगी भी जो होते हैं कई लंबे समय तक, कई सालों तक, लंबे लंबे सालों तक, कई जन्मों तक कड़ी तपस्या करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान इत्यादि ऐसे सत्पष्टान योग के नियमों का पालन करके कड़ी तपस्या करके मन को वश कर लेते हैं, मन को शांत करते हैं। लेकिन ऐसे बड़े बड़े योगी भी श्री कृष्ण के चरण कमलों के रथ के एक कण को भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन क्या बाल बाल के स्वभाव को देखिए कि वो साक्षात भगवान को आमने सामने देख रहे हैं, उनके हाथ में हाथ मिलाकर कंधे से हाथ रखकर उनसे ऐसे विलाप करते हैं, उनका क्या स्वभाव हुआ होगा। इसे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि तुम ने समझा कि ये कोई साधारण लोग नहीं है, बाल बाल इन्होंने बहुत जन्मों से बहुत पुण्य किया है, कितना पुण्य है, बहुत पुण्य किया है, इतना पुण्य बहुत इकट्ठा हुआ है का पुण्य। बताया जाता है कि ये ग्वालबाल पूर्व जन्मों में बड़े बड़े ऋषि योगी हुआ करते, भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए बहुत कड़ी तपस्या की थी उन्होंने, और इसीलिए उनको आज विष्णु का निजी स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से सारे ग्वालबाल जो है विष्णु के संग कभी उग नहीं जाते थे, आजकल के आजकल के बच्चे जो है बहुत जल्दी उग जाते हैं। आपके जो बच्चे हैं आप जानते हैं कि आजकल के बच्चों को कभी स्थिर रखना बड़ा कठिन है, जितने भी खिलौने दीजिए, जितने भी टेलीविजन के कार्यक्रम दीजिए, वीडियो गेम दीजिए, बहुत ही जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं। जितने भी खिलौने भी दीजिए, नए से नए से नए चीजों को चाहिए, वो जितना भी पैसा खर्च की हो तो नए चीज लाने के लिए सब कुछ नहीं होते। लेकिन देखिए जो वैद्य काल में जो जीवन हुआ करता था उसमें बच्चे कितने आसानी से संतुष्ट होते थे, कोई कठिनाई नहीं थी उनको, और जब वो जाते थे तो केवल पक्षियों को देखते, पक्षियों की नकल करते, वृक्षों को देखते और बाहर के जो रंग
पेड़ पे चढ़ते, पेड़ से जो फलों को तोड़कर खाते, नदी में तैरते, ये है मजा। लेकिन आजकल के बच्चों को ये मजा कहाँ है, उनको तो यही मालूम भारी भारी पुस्तकें अपने पीठ पे ले जाना, गधा मजूरी करके स्कूल में भारी भारी चीजें ले जाना, फिर ट्यूशन में जाना और फिर आकर घर में फिर वही बात, फिर टीवी के सामने बैठ जाना, और यही चीज उनको मालूम है। जो सच्चा मजा है बचपन का वो नहीं मालूम, जो वृंदावन के ग्वाल बालों ने लूटा, सच्चा मजा, सच्चा आनंद जो है। तो इसलिए आजकल हम कहते हैं कि इतनी प्रगति की है, लेकिन देखिए हमारे बच्चे भी कितने दुखी हैं। ऊपर बड़े लोगों की बात तो भूल जाइए, जो बड़े हैं, जो संसार का बोझ कंधे पर रखते हैं इसलिए दुखी हो जाते हैं, उनकी बात तो दूर है, लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे भी देखिए कितने दुखी है। वो रौनक, वो हंसी मजाक आजकल नहीं रहा बच्चों में। अभी एग्जाम में कितने मार्क लाने हैं और कल कौन सा होमवर्क है, कल टीचर क्या बोलेगी, कौन सा ट्यूशन में जाना है, क्या करना है, कल कौन सा टीवी का कार्यक्रम है, बस इसी में इनका जीवन चलता है। तो जो खुला जीवन था पहले वो नहीं है। तो ऐसे ग्वाल बाल खुलेआम ऐसे आनंद का जीवन जीते थे, गायों के संग में रहते थे, दूध पीकर हट्टे कट्टे हो जाते थे, दही मक्खन वगैरह फर्स्ट क्लास खा लेते थे और बड़े पौष्टिक आहार खाकर हट्टे खट्टे होकर आनंद का जीवन जीते थे। तो ऐसे लीला करते करते एक दिन ऐसे हुआ कि एक और असुर वहां पर आया जिसका नाम था अघासुर। अघासुर ये वास्तव में पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। जैसे बकासुर ने देखा कि मेरे बहन पूतना का वध कृष्ण ने किया है, मुझे कृष्ण को खत्म करना चाहिए, और इसलिए कृष्ण पर आक्रमण किया बकासुर ने, लेकिन बकासुर का वध कृष्ण ने बहुत आसानी से कर दिया। ठीक उसी तरह अघासुर भी सोच रहा था कि इसने पूतना का ही नहीं लेकिन मेरे भाई बकासुर का भी वध किया है, तो अवश्य मुझे इस कृष्ण का, बलराम और सारे इनके जो मित्र हैं इन सब का वध मुझे करना चाहिए, इनकी मृत्यु, इनकी हत्या करनी चाहिए। और सोच रहे थे कि मेरे जो बहन और भाई हैं पूतना और बकासुर, इनके आत्मा को संतुष्ट करने के लिए इनके जो प्राण है, ये कृष्ण बलराम और ग्वालवाल के प्राण जो हैं, ये इनके लिए पिंड तर्पण तिल जल सब मानिए सब हो जाएगा, इनका प्राण जो है ऐसे ही संतुष्ट हो पाएगा और नहीं। तो फिर घासुर ने क्या किया, अपना रूप बदल दिया। जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कई दिनों से कि ये जो असुर हैं कोई साधारण असुर नहीं थे, आजकल के असुरों की तरह ये असुर जो थे बड़े बड़े योगी थे, और उनके अंदर ये योग्यता थी कि अपने रूप को बदलें, कहां भी घूमे फिरें। और ये अघासुर ने सोचा कि मुझे बड़ा रूप धारण करना चाहिए। तो किसका रूप धारण किया उसने, बड़े सांप का। कितना लंबा था उसका शरीर, 12 योजन नहीं, 8 मील, 8 मील अर्थात 1 योजन, तो 1 योजन लंबा था, 8 मील। 8 मील सोचिए, यहां से कहां तक, काकटी तक, ये कहां आगे और भी बहुत आगे होगा, पता नहीं कहां तक, सांबरा तक कहीं और होगा, इतना लंबा सांप। हम इतने छोटे सांप को देखकर ऊपर कूदते हैं खिड़की के ऊपर, सांप आ गया तो डर के मारे, लेकिन ये 8 मील वाला सांप था। और बताया जाता है कि इतना विशाल उसका मुख, इतना विशाल था कि मुख का जो नीचे का हिस्सा है जमीन पर, तो ऊपर का हिस्सा मुंह खोल के बैठा हुआ था, अजगर, अजगर के रूप में था, अजगर सांप। तो ऊपर का हिस्सा जो है वो बादलों को छू रहा था, गगनचुंबी जो है उसका मुंह हो गया था, और मुंह खोल के बैठा। अजगर का, अजगर की आदत होती है, इसको अजगर वृत्ति कहते हैं। कभी कभी कोई साधु भी होते हैं ना, जो अवधूत होते हैं वो उस अजगर वृत्ति को अपनाते हैं। अजगर वृत्ति मतलब अजगर की तरह अपने खाने पीने का इंतजाम करना। अजगर क्या करता है, इधर उधर घूमता नहीं है अपने भोजन के लिए, एक जगह लेट जाता है, मुंह खोल के बैठता है, जो भी पास में आते मुंह में आते हैं बंद करके हजम कर लेता है, जो नहीं आता है तो चले जाए, लेकिन जो आते हैं उनको खा लेता है। तो अवधूत जो अजगर वृत्ति का पालन करते हैं वो भी ऐसे एक जगह लेट जाते हैं, किसी ने आके कुछ दिया भोजन तो दिया, नहीं दिया तो भगवान की कृपा समझ कर उपवास करते हैं, अजगर वृत्ति, जैसे ऋषभदेव महाराज करते थे, और 11वें स्कंद में जो वर्णन है अवंती ब्राह्मण का वो भी करते थे। प्रहलाद भी ऐसे एक अवधूत को मिले जो ऐसे ही अजगर वृत्ति का पालन करते थे। तो ऐसे अजगर वृत्ति, अजगर वृत्ति मतलब जो अजगर है मुंह खोल के बैठता है। तो अघासुर ने अजगर का रूप धारण किया था, इसलिए अघासुर ने भी अपना मुंह खोल के वो बैठ गया था, और वो सोच रहा था कि मैं बहुत भूखा हूं इस कृष्ण के लिए, क्योंकि इसने मेरे बहन और भाई की हत्या की है, और सारे ग्वाल बालों को मैं खत्म कर दूंगा। तो जब ग्वाल बाल वहां आए तो देखे, अरे ये क्या विशाल शरीर है, क्या है ये, अजगर की तरह लग रहा है लेकिन क्या है ये, कि जीवित है मृत है क्या है। पहले थोड़े ग्वाल बालों ने सोचा ये कोई वृंदावन की नई सीनरी है, कोई नया दृश्य है वृंदावन का, पहले तो कभी नहीं देखा था, लेकिन वृंदावन में तो अद्भुत चीजें, सुंदर सुंदर चीजें हर दिन होती रहती थी, तो आश्चर्य की बात है ब्रजवासियों के लिए कोई थी नहीं अभी। तो उन्होंने सोचा कि यह कोई नई दृश्य, नया दृश्य है, हो सकता है कोई नया नई प्रतिमा है ये। तो आपस में ग्वाल बाल चर्चा करने लगे कि अरे ये क्या है, ये जीवित है, ये सांप है कि क्या है, कोई पुतली है, प्रतिमा है, क्या है। तो एक बाल बाल सारा उन्होंने विश्लेषण कर लिया, एनालिसिस कर लिया पूरा, इधर से देखकर उधर से देखकर, हाँ दूर से कर रहे थे, पास में आने का साहस नहीं हुआ किसी को, दूर से देख के कह रहे थे कि देखो तो सही, ये तो सच्चा अजगर रखता है, झूठा नहीं है ये, देखो तो इसके मुख से उसकी सांस है गर्म लू की तरह बाहर आ रही है, और वास्तव में यहां गंध जो आ रहा है क्योंकि इसके पेट में सारे पशु हैं जो उसने शव खाए हुए हैं, मृत शरीर खाए हुए हैं, इसलिए उन शवों का बदबू आ रही है, और उसके आंख तो देखो लाल लाल है, और उसके दांत तो देखो पहाड़ों की तरह ऊंचे हैं, और उसकी जिह्वा तो देखो जो बाहर आई हुई है, ये तो बड़े हाईवे की तरह है, जैसे लंबे चौड़े हाईवे होते हैं, भारतवर्ष में तो छोटे छोटे हाईवे होते हैं, लेकिन विदेश में जाएंगे तो हाईवे तो बड़े लंबे चौड़े होते हैं, इतने लंबे चौड़े, चार चार लेन एक साइड में, एक दिशा के लिए चार, कभी दस लेन ऐसे, और दूसरे तरफ जाने के लिए वैसे, तो समझिए कि कितने लंबे चौड़े। तो ग्वाल बाल कह रहे थे कि ये तो बड़े एक मार्ग की तरह है, हाईवे की तरह है उसकी जिह्वा, और उसके जो मुख के जो किनारे हैं वो तो ऐसे हैं कि मैं मानो कि बड़े एक पहाड़ के गुफे की सीमा की तरह है, और इसके मुख में इतना अंधकार है जैसे कि बड़े गुफे के अंदर होता है। तो इस प्रकार से ग्वाल बाल इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये एक जीवित सांप है, ये कोई प्रतिमा नहीं है, तो सोच लगे कि ये कृष्ण को और हमें खत्म करने के लिए आया है, लेकिन इसका भी वध होगा, जैसे कि कृष्ण ने बकासुर का वध किया था ऐसे ही ये थोड़ी निकल पाएगा ऐसे, तो चलो हम इसके मुख में चलें, अंदर जाएं। और सभी ने सोचे ताली मारे, चलो चलो वाह वाह बहुत खूब चलो मुख के अंदर। उनके लिए कोई एक खेल था, कोई और क्रीड़ा थी, कृष्ण हमारे साथ में है, तो जैसे उन्होंने ये सोचा कि अभी हमें अंदर जाना चाहिए, इस सांप के मुख के अंदर जाना चाहिए, सारे ग्वाल बाल मुड़कर कृष्ण के सुंदर मुखारविंद की ओर देखा, और उन आंखों में वही संदेश था, हम जा रहे हैं कृष्ण। तो कृष्ण के प्रति इतना कॉन्फिडेंस था, इतना उनके उत्साह थी, वो जानते थे कि कृष्ण रहे तो कोई डरने की बात नहीं है, बड़े से बड़ा असुर आए कोई भी आए, कृष्ण हमारे साथ में हो बस जहां भी जाए चलेंगे। तो बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े अपना सीना तान के जो है सारे ग्वाल बाल चले, एक के बाद एक के बाद एक, देखते हुए जैसे प्रवेश करने लगे अघासुर के मुख में, ऊपर ऊपर देखने लगे, क्या भीषण मुख है, क्या गुफा जैसा है, ये दांत देखो कैसे है, इसका जिह्वा तो देखो कैसे है, जैसे ग्वाल बाल कहीं इधर उधर बच्चे कहीं जाएंगे तो कैसे करेंगे, वैसे देखते फिरते सारे लाइन में, कितने ग्वाल बाल थे, असंख्य हजारों की संख्या में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइन हुई होगी, लेकिन कई लेन थे ना उसमें, तो कई रंग बनाए उन्होंने, क्यों बनाए, एक के बाद एक हजारों की संख्या में ग्वाल बाल अंदर जाने लगे, यूं यूं इधर उधर देख रहे हैं, और अघासुर देख रहे हैं, आओ आओ अंदर मैं इंतजार कर रहा हूं, और कृष्ण इधर देख रहे हैं, वो सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, मेरे ग्वाल बाल मित्र जो है अंदर जाना चाहते हैं, मुझे उनको रोकना चाहिए कि ये तो असुर है, ये अघासुर नाम का असुर है, इनको रोकना चाहिए। तो कृष्ण ऐसे सोच ही रहे थे कि उस समय ग्वाल बाल सब अंदर चले ही गए, और उस समय कृष्ण सोचने लगे कि अरे अब क्या किया जाए, और कृष्ण भगवान विस्मित हो गए अपने माया शक्ति, अपने योग माया शक्ति की क्रिया से। देखिए योग माया और भगवान की अन्य शक्तियां जो हैं, भगवान की लीला में ऐसे सहायता करती हैं, भगवान के लीला के रस को बढ़ाने के लिए, कि कभी कभी भगवान भी चकाचौंध हो जाते हैं, भगवान भी विस्मित हो जाते हैं, और वाकई इस समय भी भगवान विस्मित हो गए कि अरे मेरी योग माया की शक्ति को देखो, कि मेरे कुछ करने के पहले ही ये ग्वाल बाल अंदर चले गए, मैं इनको रोकना चाहता था, लेकिन रोकने से पहले मेरी योग माया शक्ति ने ऐसे कोई योजना कर दी कि ये बच्चे अंदर घुस ही गए। तब घुस गए तो अब क्या किया जाए, भगवान सोच रहे हैं अब क्या किया जाए, जैसे कि भगवान को नहीं मालूम, भगवान तो अनंत वीर सर्वज्ञ है, मतलब सब चीजों को जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, भूतकाल को जानते हैं, भविष्य काल को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, हर एक प्राणी को जानते हैं, हर एक प्राणी के हृदय में वह है, सब कुछ जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हुआ था, तो फिर ऐसे कैसे सोच विचार में पड़ गए भगवान की क्या करना चाहिए। ये भगवान की लीला है, भगवान की योग माया भी भगवान के हृदय के ऊपर मन के ऊपर ऐसे प्रभाव डालती है कि कभी कभी भगवान सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे फिल्मों में हम देखते हैं, हम नहीं मतलब लोग देखते हैं कि कभी फिल्मों को ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए स्पेशल इफेक्ट वगैरह डालते हैं, कोई म्यूजिक डालते हैं तो कोई आवाज साउंड इफेक्ट लाइट इफेक्ट वगैरह करते हैं। तो भगवान की योगमाया शक्ति भी लीलाओं को और भी जो है सत्य बनाने के लिए, सत्य के रूप में लगने के लिए वो ऐसे ऐसे सब योजनाएं करती हैं। तो भगवान सोच लगे कि अभी इनको बचाने के लिए तो मुझे अंदर जाना ही होगा, तो वो भी चले और अघासुर इसी के लिए इंतजार कर रहे थे। अगर ग्वाल बालों को केवल नष्ट खाना चाहते थे, उनको खत्म करना चाहते, तो अघासुर तुरंत अगर मुख बंद कर लिया होता अघासुर ने, सब मर गए होते। लेकिन मुख खोल के रखा था अघासुर ने कि आओ कृष्ण जब आएगा तब मुख बंद करूंगा मैं। तो कृष्ण ने सोचा कि और कोई उपाय नहीं है, तो मुझे अगर असुर को मारना है, ग्वाल बालों को बचाना है, दोनों साथ में करने हैं कार्य, तो अंदर जाना ही पड़ेगा। तो कृष्ण अंदर चले गए और उस समय ग्वाल बाल वहां सोच रहे थे, अभी सोइए मत, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। तो उस समय जब कृष्ण अंदर गए तो क्या किया, जैसे कृष्ण अंदर गए तो ऊपर से बादलों के पीछे से सारे जो देवी देवता देख रहे थे उनमें हाहाकार मच गया, हाय हाय हाय, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कृष्ण अंदर चले गए इस भीषण असुर के मुख में। वास्तव में अघासुर जो है इतना भयंकर असुर था कि सारे देवी देवता गण भी इसको इससे घबराते थे। बताए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि देवता गण अमृत का पान करते थे रोज, उनकी उम्र को बढ़ाने के लिए, आयु की जीवन की अवधि को बढ़ाने के लिए, और वैसे इसलिए वो हजारों हजारों सालों तक जीते हैं देवतागण। लेकिन अमृत का पान करने के बाद भी अघासुर जैसे असुरों से डरते थे कि अघासुर कहीं हमारे लिए खतरे का कारण न बने, जल्दी से जल्दी अघासुर का वध हो जाना चाहिए। तो इतना सब अमृत का पान करने के बाद में, इतने बड़े बड़े देवी देवता होने के बाद में भी, स्वर्ग लोक में रहने के बाद में भी घबराते थे। लेकिन ये ग्वाल बाल जो है साधारण गांव के बच्चे, उन्होंने कोई बीकॉम बीए नहीं किया था, वो कोई संस्कृत के विद्वान नहीं थे, साधारण छोटे छोटे ग्वाल बाल के बच्चे हैं ये। अमृत का पान इन्होंने देवताओं के अमृत का पान नहीं किया था, फिर भी निर्भय, कोई चिंता नहीं, अघासुर के मुख में जा रहे हैं। उधर देवतागण इतने दूर रहते हुए भी अघासुर को देखकर घबरा रहे हैं, और इधर छोटे छोटे बालक अघासुर से न घबराते हुए उसके मुख में ही चले जा रहे हैं। ऐसा साहस उनको कहां से आया, क्योंकि वो और एक अमृत का पान करते थे। कौन से अमृत का पान करते थे, कृष्ण स्मरण करते, दर्शन करते, और दिन भर कृष्ण के लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते। तो श्रवण इनके कथाओं का पान अपने कर्णों से करते, उनके सुंदर रूप का पान अपने नेत्रों से करते, उनके सुंदर लीलाओं का स्मरण अपने मन से करते, और इसीलिए ग्वाल बाल जो हैं पूरी तरह से निर्भय रहे, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, साहस उनके हृदय में ऐसा कि मानो कोई उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और वास्तव में सत्य है, जब कृष्ण इनके साथ में है तो कौन किसी का कुछ बिगाड़ सकता है। तो इस तरह से हाहाकार मच गया देवी देवताओं में कि अब क्या होगा। कृष्ण भगवान थोड़ा सस्पेंस बढ़ाना चाहते थे, तो इस समय अघासुर ने देखा कि चलो अब कृष्ण आ गए अंदर, बलराम आए, ग्वाल बाल आए, मुख बंद कर दिया। मुख बंद करने ही जा रहे थे वास्तव में कि उस समय कृष्ण भगवान ने सोचा कि देवी देवतागण भी चिंतित हो गए हैं, तो उनको शांत करना होगा। तो क्या किया कृष्ण भगवान ने, अपने आप को विस्तारित किया, अपने आप को विस्तारित किया। तो अघासुर ने सोचा कि ये क्या हो रहा है मेरे पेट के अंदर, कौन बड़ा हो रहा है ऐसे। तो उसने भी अपना शरीर और भी विस्तार कर लिया, महिमा सिद्धि का प्रयोग किया अघासुर ने। लेकिन कृष्ण भगवान तो योगेश्वर है, महिमा सिद्धि के प्रभु है, तो उन्होंने और अपने शरीर को विस्तार किया, और ऐसे विस्तार किया कि सांस लेना ही मुश्किल हो गया अघासुर को। और पूरी तरह से ऐसे लगा उनको कि कोई मतलब गला दबा रहा है और सांस नहीं ले पा रहे, और अंदर से इतना दबाव प्रेशर बढ़ गया कि आंखें जो है वो बाहर आ गई, पूरी तरह से बाहर पक करके बाहर आ गई, और अगासुर को सांस लेने में तकलीफ हो गई। और अगासुर वहीं के वहीं मर नहीं जा रहा था, लेकिन प्राण को निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो सुखदेव महाराज बताते हैं कि उसके सर से भी एक विस्फोट हुआ, वहां छेद हुआ, छेद से फिर उसकी आत्मा और प्राण निकल गए। और आत्मा निकली तो कैसे निकली, मानो कि जैसे कोई बहुत प्रज्वलित चीज है जो बहुत प्रकाशमान कोई वस्तु निकल रही है, और वहां पे जाकर आकाश में थोड़ी देर खड़ी हुई वो आत्मा, अघासुर की आत्मा। और कृष्ण भगवान ने अपना अपने जो नेत्र है अपना दिव्य अपने दिव्य दृष्टि सारे ग्वाल बाल पर ऊपर उन्होंने की दे दी, ताकि सारे जो ग्वाल बाल थे वो फिर से जीवित हो गए। जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, सारे ग्वाल बाल अघासुर के मुख के बाहर आए, ताली मारते मारते आए, देखो कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया। और जैसे ही कृष्ण बाहर आए तो वो अघासुर की आत्मा जो बाहर उनके लिए इंतजार कर रही थी, वो जाके कृष्ण के शरीर में लीन हो गए, जैसे कि शिशुपाल के साथ में हुआ था। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का भी उद्धार किया। देखिए कृष्ण कितने कृपालु हैं, कि ऐसे जो अघासुर जैसे असुर भी होते हैं जो कृष्ण का वध कृष्ण की हत्या करना चाहते हैं, ऐसे असुरों का भी उद्धार कर देते हैं कृष्ण भगवान। वास्तव में अघासुर को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। आप जानते हैं कि पांच प्रकार के मुक्ति होते हैं, कौन से हैं वो पांच प्रकार के मुक्ति, सारूप्य अर्थात भगवान के समान रूप की प्राप्ति होना, दूसरा सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के निराकार ब्रह्म में या तो फिर भगवान के दिव्य शरीर में लीन होना, तीसरा सामीप्य अर्थात भगवान के समीप रहने की रहने का अवसर प्राप्त होना, चौथा सालोक्य अर्थात भगवान के साथ में उसी ग्रह के ऊपर उसी लोक के ऊपर रहना, और आखिरी साष्टि अर्थात भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होना। तो इनमें से कौन सी मुक्ति है जो भक्तों को पसंद नहीं है, कोई भी मुक्ति पसंद नहीं है भक्तों को। पांच प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, वो क्या चाहते हैं भक्त, भगवान की सेवा चाहते हैं, लेकिन उनको मुक्ति मिल जाती है वो अलग बात है। लेकिन कौन से प्रकार की मुक्ति भक्तों को नहीं मिलती है, सायुज्य मुक्ति जो कि भगवान में लीन होने की बात है। बाकी कोई चार मुक्ति मिल जाती है, लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो भक्तों को मुक्ति मिलती है उसे विमुक्ति कहते हैं, विशेष मुक्ति विमुक्ति वो मिलती है उनको। तो प्रश्न ये आता है कि अघासुर को कौन सी मुक्ति मिल गई। अघासुर को वैसे देखा जाए तो सायुज्य मुक्ति मिली, क्योंकि उसकी आत्मा लीन हो गई भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में। लेकिन आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि नहीं, उनको सारूप्य मुक्ति मिली, और वो गोलोक वृंदावन में नहीं वैकुंठ में नारायण का स्वरूप चतुर्भुज का स्वरूप उनको मिला। तो ये कैसे हो सकता है, जैसे कि शिशुपाल और दंतवक्र उनकी आत्मा जब शरीर के बाहर आई और कृष्ण भगवान में लीन हो गई, सायुज्य मुक्ति हो गई, लेकिन वैसे शिशुपाल दंतवक्र है कौन, वो तो जय विजय है वैकुंठ के। तो जिस तरह से शिशुपाल और दंतवक्र को पहले सायुज्य मुक्ति मिली, लेकिन ये सायुज्य मुक्ति जो है ये एक माध्यम था उनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ठीक उसी तरह से अघासुर को भी पहले सायुज्य मुक्ति मिली, श्री कृष्ण के शरीर में गए और उसके बाद में उनको सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से अघासुर को वैकुंठ में एक जगह मिली, भगवान श्री नारायण या विष्णु के समीप रहे, चतुर्भुजाओं के सच्चिदानंद रूप उनको मिला। तो अघासुर इतना द्वेषी था, वो चाहता था कि कृष्ण को मारूं मैं, और ये जो दिव्य आनंद ये लूट रहे हैं सारे ग्वाल बाल कृष्ण के साथ में, इसको मैं सहन नहीं कर सकता हूं। द्वेषी लोगों की भावना यही होती है कि जब वो दूसरों को आनंद देखते हैं तो सहन नहीं कर पाते, दूसरों का यश देखते हैं तो सहन नहीं कर पाते हैं। तो ठीक उसी तरह से अघासुर भी नहीं सहन कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इनकी सुंदर सुंदर क्रीड़ाओं को मुझे रोकना चाहिए, इसलिए अघासुर भी वहां आ गया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुंदर टीका इस बात पर करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो सारी क्रीड़ाएं लीलाएं जो ग्वाल बाल कृष्ण के साथ में कर रहे थे, ये तो कोई साधारण क्रीड़ाएं नहीं है, ये दिव्य लीलाएं हैं जिनमें दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे थे ये सारे ग्वाल बाल कृष्ण के साथ में। तो अघासुर जैसा व्यक्ति असुर कैसे इन दिव्य लीलाओं में के आनंद को भंग कर सकता है, कैसे हो सकता? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इसका कारण ये था, पहली बात दिव्य लीलाओं का भंग नहीं हो सकता, दिव्य लीलाओं वो भंग नहीं हो सकते, लेकिन उनमें रुकावट इसलिए आते थे कि योग माया चाहती थी कि वो भोजन ग्रहण करें। अगर ऐसे कोई रुकावट नहीं आते तो ऐसे दिव्य लीला उनके जो खेलकूद किया करते थे वो करते रहते सारा दिन भर भूखे रह जाते, क्योंकि ऐसे दिव्य लीलाओं में इतना आनंद ले रहे थे वो कि फिर उनको भोजन के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो भगवान की योग माया शक्ति ने ऐसी योजना की कि हर दिन दो तीन असुर आया करते थे ताकि उनके खेलकूद में थोड़ा रुकावट हो जाए, रुकावट के बाद में थोड़ा प्रोग्राम परिवर्तित हो जाता था कार्यक्रम, फिर थोड़ा प्रसाद लेते थे, फिर खेल क्रीड़ा चालू करते थे, फिर जब भूख लगती थी और कोई असुर आ जाता था तो कार्यक्रम फिर बदल जाता था, फिर थोड़ा प्रसाद लेते थे। तो योग माया जो है ऐसे भगवान की लीला में सहायता करती थी, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुंदर टीका देते हैं इस बात को। तो देखिए लीला के मिठास कैसे बढ़ जाते हैं आचार्यों के टीका से। तो इस तरह से अघासुर का वध किया तो अघासुर का शरीर जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया, जैसे ग्वाल बाल फिर बाद में आया करते थे और वहां पर उसी दिन में आकर वो सूखने लगा अघासुर का शरीर, कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या है वहां वन में। और ऐसे हुआ कि इस समय जबकि कृष्ण भगवान ने ये लीला की तो वो 5 साल के थे, कुमार अवस्था में थे, और ब्रजवासियों ने अघासुर के वध की कहानी 1 साल बाद में सुनी जब सारे ग्वाल बाल कृष्ण सहित पौगंड आयु में प्रवेश कर चुके थे, 6 साल की आयु में। तो स्वाभाविक है कि परीक्षित महाराज के मन में यह प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों हुआ कि अघासुर के वध होने के 1 साल बाद में ग्वाल बालों ने सारे ब्रजवासियों को बताया कि ये लीला हुई है और यह भी अभी हुई है जबकि 1 साल पहले हुई थी। वैसे तो हर दिन जब भी ग्वाल बाल लौट कर आते थे तो क्या करते थे, अपना दैनिक रिपोर्ट दिया करते थे वृंदावन न्यूज कि आज कृष्ण ने ऐसे ऐसे किया, इस असुर का वध किया, वो अद्भुत कार्य संपन्न किया। लेकिन ये लीला का वर्णन ग्वाल बालों ने ठीक 1 साल बाद में किया। तो स्वाभाविक है परीक्षित महाराज जैसे अनुभवी भक्त के हृदय में यह प्रश्न आया कि यह क्यों हुआ, और हुआ भी तो अवश्य इसके बीच में कृष्ण भगवान की कोई विशेष शक्ति है, शक्ति का कार्य है इसके पीछे, कोई अद्भुत लीला है ये। तो ये क्या कारण है? तो ये प्रश्न जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो सुत गोस्वामी अभी नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषियों को बताते थे कि भाव विभोर हो गए। भाव विभोर होकर वैसे अपने अंतरंग चित्त में जाने ही वाले थे कि फिर अपने आप को संभाल लिया उन्होंने, संभल गए, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड के कोने कोने से इतने सारे ऋषि मुनिगण आए थे इस प्रवचन को सुनने के लिए, और परीक्षित महाराज भी सामने बैठे थे, उनको 7 दिन का समय दिया हुआ था कि तक्षक नाग आके काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर सुखदेव महाराज ऐसे भाव विभोर हो जाते तो परीक्षित महाराज का क्या होता, वो भागवत का प्रवचन समाप्त नहीं कर पाते। इसलिए भाव विभोर होते हुए भी सुखदेव महाराज संभल गए, अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि उनको यह प्रश्न इतना अच्छा लगा, क्योंकि प्रश्न के उत्तर में इतना रस था कि उस उत्तर के बारे में सोचते सोचते ही वो भाव विभोर हो गए। तो परीक्षित महाराज के बहुत ही इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब देने के पहले सुखदेव गोस्वामी थोड़े अपने आप को तैयार किया, अपने भाव को थोड़ा उन्होंने तृप्त कर दिया, थोड़ा कम कर दिया और फिर बोलने के लिए तैयार हुए। तो क्या जवाब था सुखदेव गोस्वामी का इस महत्वपूर्ण प्रश्न का, वो आप सबको सस्पेंस में रखेंगे और इसके बारे में कल चर्चा होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में कौन है अघासुर? वास्तव में पिछले जन्म में अघ नाम का असुर था जो कि शंखासुर का पुत्र था और इसका शरीर बहुत सुंदर था, खूबसूरत था, इसलिए बहुत घमंड इसके हृदय में आ गया था। जैसे कि अक्सर होता है जिनके पास बहुत सौंदर्य होता है अक्सर वो बहुत घमंड उनके हृदय में आ जाता है। तो एक बार ये अघ नाम का असुर जो है वो अष्टावक्र मुनि के सामने आया। अब अष्टावक्र मुनि का जो शरीर है उसके अंदर थोड़े विकार थे। इसके पीछे भी एक कथा है जो शायद एक बार आपको सुनाई थी हमने यहां भागवत क्लास में, आपको याद होगा कि अष्टावक्र आठ जगह में बक्या हुआ शरीर था उनका। कृष्ण भगवान को त्रिभंग मुरारी कहते हैं। त्रिभंग मतलब तीन जगह में उनका शरीर बका हुआ है, खास करके जब वो मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं तो तीन जगह में उनका शरीर बक जाता है। कौन से है वो तीन जगह? गर्दन, फिर कमर और घुटने। तो तीन जगह पर भगवान श्री कृष्ण बक जाते हैं, इसलिए उनको बांके बिहारी कहते हैं। बांके हुए हैं और रमण कर रहे हैं, केशी घाट पर वंशी वट पर खड़े हुए बांसुरी बजा रहे हैं, रमण कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जब बक जाते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन अष्टावक्र मुनि के शरीर में आठ जगह वो बके हुए थे तो इसलिए उनका शरीर जो है थोड़ा कुरूप हो गया था, दिखने में सुंदर नहीं लग रहा था। तो ये अघ ने उनको देखा, वो इतने सुंदर और ये इतने कुरूप, हंसने लगे। तो अष्टावक्र मुनि को बड़ा क्रोध आया कि अरे तुम घमंडी व्यक्ति हो, इतना घमंड है तुम्हारे तुम्हारे सौंदर्य के ऊपर, मैं श्राप देता हूं कि तुम सबसे कुरूप सांप बनोगे पृथ्वी लोक के ऊपर। तो ये सुनकर अघ नाम के असुर को बड़ा डर लग गया। जैसे अक्सर होता है श्राप देने के बाद में तुरंत गिर पड़े अष्टावक्र मुनि के चरणों में, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत गलती हुई। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं इस आशीर्वाद इस श्राप को मैं पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जब कृष्ण भगवान स्वयं आएंगे तुम्हारे शरीर के ऊपर उनका चरण रखेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये आशीर्वाद, तो श्राप था या आशीर्वाद था? ये आशीर्वाद। सारे जो भी कृष्ण लीला में असुरों का वध होता है, जिनको श्राप मिला था कि उनको ऐसे असुर की योनि प्राप्त होगी और फिर कृष्ण के हाथ वो मारे जाएंगे, उनको श्राप थे लेते आशीर्वाद मिले थे। वास्तव में आशीर्वाद है, संत श्राप भी देते हैं तो वो आशीर्वाद निकलता है वास्तव में, क्योंकि हमेशा संत जो होते हैं लोगों के हितैषी होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं। तो ये अघासुर जो है किन अनर्थों का प्रतीक है? क्रूरता का, द्वेष का। बहुत अच्छा। जिस द्वेष भावना से हम दूसरों का अहित करना चाहते हैं, दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं, ये प्रवृत्ति हम संसार में बहुत देखते हैं, लोगों में बहुत दिखने में आता है। अगर हमारे हृदय में भी परीक्षा करेंगे तो हमारे ख्याल से ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वहीं पर उमड़ रही है ये भावना कि दूसरों की भलाई होती तो सहन नहीं होती, दूसरों को नुकसान करने की इच्छा, ये द्वेष भावना से क्रूरता उत्पन्न होती है। तो इसका अनर्थ है, इसका प्रतीक है अघासुर। और ऐसे भावना से नाम अपराध भी होता है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करके ये अघासुर जो हमारे हृदय में विराजमान है, शान से सिंहासन पर बैठा हुआ है, ऊपर बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसको कृपा करके आप हमारे हृदय में आइए और इसे आप खत्म कर दीजिए, ताकि आपके हमारे हृदय में ईर्ष्या की भावना न रहे, छल कपट की भावना न रहे। निन्मत्सराणाम सताम धर्म कैतव अत्र परमो निन्मत्सराणाम सताम। ये भागवत है, कृष्ण लीला कृष्ण भक्ति केवल उन लोगों के लिए है जो निर्मत्सर है, जिनके हृदय में मात्सर्य की भावना ईर्ष्या की भावना खत्म हो चुकी है। तो ईर्ष्या की भावना होती है अघासुर की वजह से, हमारे हृदय में जो अघासुर है। तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए इस अघासुर को खत्म कर दीजिए और आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा, जब जो अच्छे गुण होते हैं वो तो भगवान से आते हैं, तो दुर्गुण हमारे अंदर कहाँ से आते हैं?
दुर्गुण भी आते हैं भगवान से ही, क्योंकि भगवान के अंदर कोई, हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो कि भगवान में नहीं है। हो सकता है बूंद में क्या ऐसे कोई गुण हो सकते हैं जो सागर में नहीं है? उसी प्रकार से जीव में ऐसे कौन से गुण हो सकते हैं जो भगवान में नहीं है? लेकिन जो चीज भगवान में पूजनीय है, आराधनीय है, वो हमारे अंदर कभी कभी दुर्गुण कहलाते हैं। जैसे भगवान माखन चोरी करते थे, इसलिए हम उनको माखन चोर कह के उनका गुणगान करते हैं और गोविंदा आला रे करके सड़कों में लोग उनकी उनका गुणगान करते हैं। लेकिन हम इधर कहीं गाय चुरा ले लें या किसी स्वीट मार्ट में जाकर मक्खन चोरी कर ले तो देखिए क्या होता है, कैसा गुणगान होता है, क्या हमारी परिस्थिति होगी उसके बाद में, कोई हमारा ये लीलाओं का वर्णन नहीं करेगा। तो जो भगवान में जो अच्छे गुण होते हैं हमारे अंदर दुर्गुण बन जाते हैं कभी कभी, सारे नहीं कभी कभी। और जैसे देखिए भगवान जब भाग जाते हैं रणभूमि से तो रणछोड़ नाम से वो विख्यात होते हैं। आज भी रणछोड़ राय का मंदिर है डाकोर में, अहमदाबाद के पास में, इतने सारे भक्त जाते हैं और रणछोड़ राय की जय बोलते हैं। अगर कारगिल से कोई भाग गया होता सैनिक तो उसको क्या उसकी जय जयकार करते? जो वस्तु भगवान में पूजनीय है हो सकता है हमारे अंदर में नहीं हो। तो इसी प्रकार से भगवान घबरा जाते हैं माता यशोदा से, अपने मित्रों से, मित्र कहते हैं अगली बार ऐसा करोगे हम खेलने में नहीं लेंगे तुम्हें, भगवान घबरा जाते हैं। तो अगर हम घबरा जाएंगे अगर ऐसे तो कहते हैं ये तो डरपोक है। तो इस तरह से ऐसे भी तो तथाकथित दुर्गुण होते हैं, वो भगवान में होते हैं लेकिन उनमें वो परिपूर्ण है, उनमें पूजनीय होते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात, ऐसे दुर्गुण जैसे ईर्ष्या वो भगवान में नहीं होते, लेकिन ईर्ष्या क्या चीज है? ये विकृत प्रतिबिंब है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो ये भावना हमारे अंदर आती है। जैसे अंधकार क्यों होता है? जब हम सूरज को पीठ दिखाते हैं तो सामने हमारे अंधकार हो जाता है। तो अंधकार इसलिए होता है कि सूरज है, सूरज नहीं होता तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं होता। अंधकार क्या है जिसको हम नहीं जानते, हम छाया में आते हैं इसलिए अंधकार हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान से जब हम विमुख हो जाते हैं तो ईर्ष्या की भावना हृदय में आ जाती है, चोरी करने की इच्छा और अन्य सारे जो भी इच्छाएं हैं, ये दुर्गुण जो हमारे अंदर हैं इनको मिटाना इसलिए चाहिए कि हमें यही गुण जो कृष्ण के अंदर हैं उनके बारे में सोचना चाहिए तो हमारे दुर्गुण मिट जाएंगे। कृष्ण ने कैसे चोरी की, कृष्ण कैसे रणभूमि से भाग गए, तो ये सब गुणों के लीलाओं के बारे में हम श्रवण करेंगे तो हमारे दुर्गुण सारे मिट जाएंगे। कृष्ण भगवान ने दूसरे लोगों के पत्नियों के साथ में रासलीला की, अगर हम करके देखेंगे तो क्या होगा वो भगवान ही जाने। लेकिन भगवान जब करते हैं तो आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि गण भी उनका गुणगान करते हैं, उनकी इस लीला को पूजते हैं। लेकिन यहां पर यह सबसे नीची बात मानी जाती है और है भी, सबसे बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन भगवान में तो सबसे अच्छा गुण है वो। और स्वकीय परकीय रस, स्वकीय मतलब जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने पत्नियों के साथ में लीला करते हैं, रानियों के साथ में, विवाहित रानियों के साथ में लीला करते हैं, उसे स्वकीय कहते हैं। और जब गोपियों के साथ लीला करते हैं जो दूसरे गोपों के स्त्री हैं, उनके पत्नी हैं, तो उसे परकीय कहते हैं। और परकीय रस में ज्यादा मिठास है, परकीय रस ज्यादा ऊंचा माना जाता है कृष्ण लीला में। अगर इसी बात को हम हमारे जीवन में उतारे तो उल्टा है। तो इसलिए कृष्ण भगवान की नकल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो अच्छे गुण है हमारे लिए दुर्गुण हो सकते हैं। ठीक है, इसका विकृत स्वरूप क्यों बन जाता है? क्योंकि हम कृष्ण के स्थान को लेना चाहते हैं। कृष्ण भोग कर रहे हैं इतने सारे 16,108 रानियों की, हम भी करेंगे। तो जब ईर्ष्या होती है भगवान से कि भगवान ही क्यों भोग करें ऐसे, हम क्यों नहीं ऐसे भोगी हो जाएं, हम भी क्यों नहीं ऐसे कंट्रोलर हो जाएं, तो ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, ये हो नहीं सकता। हम भगवान की नकल करना चाहते हैं लेकिन भगवान के पद की प्राप्ति कभी भी हमारी नहीं हो सकती, इसलिए ये इसका विकार हो जाता है। क्योंकि हम मिथ्या में रहते हैं, मिथ्या भावना में मैं भी भगवान की नकल करूंगा, इसलिए इसका विकार हो जाता है।
आपने कहा कि जो भी उनके गोप गोपिका थी या गोपाल थे वो सब पहले जन्म में ऋषि मुनि थे और उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी, इसलिए उनको निजी संघ मिल गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति रहता है, अगर कोई पहले जन्म में या अभी इसी जन्म में भी तपस्या नहीं करता है, अगर उनको विष्णु की कृपा मिलती है तो क्या उनको भगवान का निजी संघ मिल सकता है?
अगर कोई व्यक्ति भक्तों के संघ में आया है इसका मतलब है कि अवश्य उसने पिछले जन्मों में थोड़ी बहुत सेवा की है भगवान की, इसलिए तो आया है। इतनी सुकृति कर ली है उसने, भक्तोन्मुख सुकृति कर ली है कि उसे अभी यहां अवसर मिला है भगवान के भक्तों का निजी संघ प्राप्त करने के लिए। हर चीज का इतिहास होता है, बैकग्राउंड होता है। क्योंकि हम केवल इस जीवन को देख सकते हैं, हम पिछले जन्मों को नहीं देख सकते, तो हमें लगता है कि क्या कारण हो सकता है। लेकिन भगवान तो सब जन्मों को जीवन को देखते हैं, वो जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है, सही समय क्या है, किसको भक्ति मार्ग में लाना, भक्तों के संग में लाना। भगवान सब अपने अपने टाइम में सही कर देते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? गलत है। महाभारत का बकासुर जिसका वध भीम ने किया और ये बकासुर जिसका वध कृष्ण भगवान ने किया, ये अलग अलग बकासुर है। वो बकासुर बड़ा पहलवान था, वो भी असुर था, ईर्ष्यालु था। अलग अलग व्यक्ति थे लेकिन दुर्गुण बीमारी वही थी और इलाज भी वही था।
पहले सवाल का प्रतिसाल है कि जो अभी हम पहले जो सवाल था उसके कनेक्टेड है। जैसे हम अभी कहते हैं कि भक्ति में आने के लिए पूर्व जन्म में कौन सी भी चीज की हो और नहीं की हो उसका कोई संबंध नहीं आता, ऐसा बोलते। किसी को अगर ये जन्म में भक्ति करने के भगवान की प्राप्ति करने के, तो प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि उसी क्षण जिस क्षण उसको लगता है भगवान की प्राप्ति करने के, उसी क्षण वो प्राप्त कर सकता है, नहीं तो सालों साल भी प्रयत्न करे उसको प्राप्त नहीं हो सकती।
तो प्रश्न क्या है
कि फिर जो अगर पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ किया भी नहीं हो, सुकृति भी नहीं हो, तभी भी उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं।
दो प्रकार के सिद्धियां होती हैं, कृपा सिद्धि, साधना सिद्धि। जो साधना सिद्धि होते हैं, साधना सिद्ध व्यक्ति होते हैं, साधना से अपना जीवन को सिद्ध करते अनेक जन्मों तक करते रहते हैं। भगवान की कृपा तो हर पल में आवश्यक है, चाहे वो साधना सिद्ध हो कृपा सिद्धि हो। लेकिन कृपा सिद्ध ऐसा है जो भगवान वो अयोग्य होने के बाद में भी उसको भगवान कृपा डालते हैं, ले जाते हैं। ये भगवान का अधिकार है। वो भगवान जिसको चाहे ले जाते हैं, भगवान के ऊपर कौन से नियम लागू हो सकते हैं? भगवान को कहेंगे अरे इसने सिद्धि नहीं की, साधना नहीं की, आप क्यों ले जा रहे हैं उसे? ऐसा नहीं पूछ सकते भगवान को। भगवान जिसे चाहे उसे ले जा सकते, जिनके ऊपर कृपा करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। भगवान सिस्टम को फॉलो करने के लिए मजबूर तो नहीं है लेकिन फॉलो कर देते हैं प्राय। कभी कभी मूड हुआ तो तोड़ भी देते हैं, लेकिन चाहे साधना सिद्ध हो या कृपा सिद्ध हो, कृष्ण की कृपा की आवश्यकता के, कृष्ण की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? कृपा है, बड़े बड़े असुर इतने पापी होते हैं फिर भी भगवान का उद्धार करते हैं, तो जब भक्त उनकी सेवा करते हैं तो भगवान उनका कितना और उद्धार करेंगे, ये सोचिए। इसी विषय के बारे में हम पूतना वध की जब चर्चा कर रहे थे तो यही बातें हो रही थी। पूतना जो इतनी बड़ी राक्षसी थी, उसको धाती का स्थान मिला गोलोक वृंदावन में, अघासुर जैसा व्यक्ति है उसको भगवान का सारूप्य मुक्ति, भगवान के समीप रहने का अवसर मिल गया, सारूप्य मुक्ति मिल गई। तो जो भगवान के भक्त है उनको सब शरण में, उनके शरण में जाकर सब कुछ अर्पण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनका देखभाल क्या नहीं करेंगे भगवान। लेकिन फिर भी हम भक्ति मार्ग में होने के बाद में भी हमें संशय आते हैं, करेंगे नहीं करेंगे भगवान, करेंगे नहीं करेंगे। ऐसे ये अच्छा है थोड़ा ज्यादा पैसे कर लेना अच्छा है, कल पता नहीं कल कृष्ण आएंगे नहीं आएंगे, हो सकता है कृष्ण दूसरी ओर देख रहे हो और यहाँ कोई हमारे चोरी करके ले जाए, है ना, हो सकता है कृष्ण कहीं और व्यस्त हो, कोई दूसरे ब्रह्मांड में लीला कर रहे हो। तो इसलिए ये श्रद्धा की बात है। असुरों का, असुरों को भी ऐसा उद्धार किया तो भक्तों को क्यों नहीं करेंगे। इसलिए हमें भी ग्वाल बालों की तरह निश्चिंत रहना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए, कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के शरणागत रहकर हमें कार्य करने चाहिए। ठीक है, पहला संशय यह होता है भगवान है या नहीं है। सही है, यह संशय बहुत ही गहरा संशय है, ये मत समझिए कि कोई साधारण बात है। हमें थोड़ी यह संशय, हम तो जानते हैं भगवान है, हम थोड़ी जानते हैं, हमारे अंदर सोई संशय है, ऐसे नहीं है सोई संशय, लेकिन है, ये बहुत गहरी बात है। क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि भगवान है? जब मुसीबत आएगी तब परीक्षा होगी, जब कोई अचानक रास्ते में चलते हुए कोई चाकू दिखाएगा मुंह में तब परीक्षा आएगी कि भगवान है नहीं है। मृत्यु के समय परीक्षा होगी कितनी श्रद्धा है हमारी भगवान है कि नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी ने उनके सारे सन्यासी शिष्यों को बुलाया, जगह जगह से सबको बुलाया, मैं आप सबसे अर्जेंट बात करना चाहता हूं। सब लोग सोच रहे थे क्या क्या बात है, क्या बुला रहे, सबको बुलाया। कई सोच रहे थे हो सकता है प्रभुपाद जी अपना विल बनाएंगे कि आगे संस्था कैसे चलेगी, क्या होगा, वो कुछ कह सकते हैं। सबको बुलाया, बिठाया और पूछा एक एक करके, पहले जो पहले बैठे थे, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि कृष्ण भगवान है? और जिस तरह से प्रभुपाद जी ने आंखों में आंख मिलाकर ऐसे तीर के समान उनके वचन चले गए सीधे हृदय के ऊपर, तो उस भक्त के आंखें नीचे हो गईं। दूसरे को पूछा, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण भगवान है? नीचे एक एक करके सबको पूछा, सारे लोगों का मुंह, क्योंकि प्रभुपाद जी एक बात बताना चाहते थे कि केवल कोई हल्की बात नहीं है। हाँ मैं समझता हूं भगवान है, मैं जानता हूं कृष्ण को, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं, मुझे श्रद्धा है कि कृष्ण भगवान है, ये बहुत गहरी बात है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए। यह है श्रद्धा। क्या है श्रद्धा? कि जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे सर्व कर्म कृत होए, सारे अन्य चीजें कर्म सफल हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, हमें और किसी चीज की चिंता नहीं है। केवल कृष्ण भक्ति करेंगे तो और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस बात में जब हमें दृढ़ विश्वास होता है तो उसको कहते हैं श्रद्धा। ऐसा नहीं कि कृष्ण भक्ति भी करेंगे देवी देवताओं को भी साथ में ले चलेंगे, देवी देवताओं की पूजा करेंगे, अभी थोड़ा कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो इसका मतलब देवी अब हमारे ऊपर नाराज हैं, या इनका ऐसे उपासना कर रहे थे अभी नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो श्रद्धा का मतलब है कि कृष्ण के शरण में गए तो बस, और सारी चीजें खत्म, फिनिश। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना, यह है श्रद्धा। प्रभुपाद बस यही अपने एक वचन से उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया, और कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी उनको, इतना कह दिया प्रभुपाद ने। क्या तुम्हें श्रद्धा है? तो सबको लगा कि हाँ वास्तव में श्रद्धा ये है, बहुत गहरी बात है, कोई मामूली सी बात नहीं है ये कि हम कह दिया कि हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम जप करते हैं, हम भक्ति करते हैं। कितनी गहरी बात जो हम बोल रहे हैं, हम बोलते हैं लेकिन बात बहुत गहरी होती है।